ओम शांति।
ओम शांति।
ऑब्जेक्ट मुरली 30th जनवरी 1985। ऑब्जेक्ट बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। कुमारों के प्रति विशेष कुमार। ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचना को भी जानने वाले, रचता को भी जानने वाले और माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल सदा विजयी है। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना। तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना? आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र है, बंदूक है तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वो पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ता। माया कैसे आ गई, ये नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं वह बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है। पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार। आशीष भाई, आप ही जाएगा तो क्या करेगा? चलता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना, या आपको भी माया आती है और भगाने में टाइम लगाते हो, शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। कोई बार बार बीमार हो तो क्या हो जाता है? वो कमजोर हो जाता है। या बार बार पढ़ाई में फेल हो तो कहेंगे यह पढ़ने में कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदत हो जाएगी और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनो। ऐसे शक्तिशाली आत्मा, ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है। युद्ध में अपना समय नहीं गवाती, विजय की खुशी मनाती है। तो कभी किसी बात में कमजोरी न हो। मुरली है 85 की, 30 जनवरी की। कुमारों के प्रति बाबा कह रहे, कुमार ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? अब
शक्तिशाली कुमार,
तपस्वी कुमार, त्यागी कुमार, योगी कुमार, पवित्र कुमार, कुमारों के कुमार, शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार अर्थात सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात किस किस की नॉलेज? रचता, रचना और माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले। तो कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमार अर्थात शक्तिशाली, नॉलेजफुल, समझदार, पावरफुल कौन बनेंगे? किस चीज की नॉलेज चाहिए? रचता की तो है, रचना की भी हो गई, तीसरी माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल सदा विजयी है। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना। ज्ञान है परंतु वो शस्त्र बन जाए तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे। उदाहरण कौन सा दिया बाबा ने? मिलिट्री का। मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? क्योंकि शस्त्र है, बंदूक है, तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वह पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, यह नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है, ऐसे समझदार जैसे समझदार जो होते हैं वो बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। सिम्टम्स, बुखार आने वाला होगा तो पहले से ही समझेंगे क्या कुछ हो रहा है। पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो घूमता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। बहिरंग विभाग में जो इलाज होना था वो अंतरंग विभाग में होगा। फिर ओपीडी में हो सकता था या फिर कभी कभी अति दक्षता विभाग में भी डालना पड़ सकता है, आईसीयू में, अगर ज्यादा बीमारी बढ़ जाए तो। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो कुमार अर्थात नॉलेजफुल, कुमार अर्थात पावरफुल, कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात समझदार, नॉलेज को शस्त्र के रूप में यूज करने वाले। किस किस की नॉलेज? रचता की वो तो पता है, ज्यादा ही पता है थोड़ी, रचना की वो भी पता है। तीसरी नॉलेज कौन सी? माया के भिन्न भिन्न रूप, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माया, माया के भिन्न भिन्न रूप की नॉलेज। वो भी कितनी पता होनी चाहिए? जैसे कमजोरी का उदाहरण दिया है, बीमारी का उदाहरण, बीमारी आने से पहले ही पता चल जाए ये उस बीमारी का लग रहा है। नहीं तो जितने अस्पताल है दुनिया भर में वहां पर जितने मरीज आते हैं उसमें से 50% से अधिक ऐसे आते हैं कि जिनकी बीमारी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। अब तक झाड़ फूक, जादू टोना, ऐसा कुछ कुछ करते रहे और फिर जब बढ़ गई तो फिर इधर आए। तो पहले से ही जान लेना, ऐसे ही माया आती है लेकिन आने से पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना। या आपको भी माया आती है? या आपको भी माया आती है? बाबा ऐसे पूछ रहे हैं, मैंने उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि इनको भी आ सकती है। वो समझ रहा है ये माया जीत है। बाबा पूछ रहे हैं या आपको भी माया आती है या भगाने में टाइम लगाते हो? शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है, देवियों को देखकर दुश्मन दूर से भाग जाता है, इतनी पावर होती है उनमें। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ। अच्छा, एक है पहले ही पहचान लेना, एक है पहले नहीं जाना, जब आ गई, प्रवेश कर गई जीवन में तब पहचाना और फिर तलवार निकाली ज्ञान की और फिर लड़ना आरंभ किया। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ तो क्या हो जाएगा? फिर समय, शक्ति, युद्ध, योद्धा बनेंगे फिर। तो उसमें तो समय जाएगा ना, तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है फिर। कोई बार बार बीमार हो तो कमजोर हो जाते हैं। अभी अभी एक बीमारी ठीक हुई तो फिर दूसरी, दूसरी से नहीं पूरी ठीक नहीं हुई तो तीसरी, बीमारी आती रहती है एक के बाद एक। या बार बार पढ़ाई, दूसरा उदाहरण दिया, बार बार पढ़ाई में अगर फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई में, लौकिक का एक उदाहरण है, स्टडीज में अगर कोई फेल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये पढ़ने में कमजोर है। एक बार कोई फेल हो जाता तो डायरेक्ट नहीं कहते, पर कोई बार बार ही फेल हो रहा है तब कहा जाता है कि इसकी बुद्धि थोड़ी कम है, पढ़ने में ये कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदत, फिर आदत अपने आप अपना काम करती है, आदत हो जाएगी और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है, युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है, तो कभी किसी बात में कमजोरी न हो। क्या सुना? कुमार अर्थात शक्तिशाली, नॉलेजफुल, माया के भिन्न भिन्न रूप के भी नॉलेजफुल, माया के भिन्न भिन्न रूप कौन से हैं? उन आत्माओं के लिए नहीं जो पुरुषार्थ नहीं कर रही है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी है, सारी धारणाओं से युक्त है, ज्ञान का मनन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले, अध्ययन करने वाले, चर्चा करने वाले हैं, ऐसी आत्माओं के लिए माया के कौन से रूप है? उन्हें हर प्रकार की हर श्रीमत पता है, उनके लिए माया कौन से रूप में वर्तमान समय आती है? और सूक्ष्म में मैं के रूप में और अहंकार, मैं, संस्कारों की टक्कर और मान शान, विस्तार से बताओ थोड़ा। मेरा पुरुषार्थ मैं के भी एकदम सूक्ष्म रूप, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, महान पुरुषार्थी है, जिन्हें सारी श्रीमत पता है, जो दूसरों को श्रीमत सुनाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो ऐसी आत्माएं जिनका योग का चार्ट बहुत अच्छा है, धारणाएं बहुत अच्छी है, अमृत वेला बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल है, दूसरों को देखकर, हाँ ये एक पावरफुल पॉइंट है। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति सूक्ष्म घृणा का भाव, हम तो कर ही रहे बहुत अच्छा, परंतु ये नहीं कर रहे, इनको भी करना चाहिए, ये क्यों नहीं करते? समय है योग का और खेल रहे हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, समय है योग करने का, फोन पर लगे हुए हैं, समय है योग का और बाजार में घूम रहे। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सूक्ष्म घृणा का भाव आना, ये उन आत्माओं के लिए माया है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। एक दूसरा दूसरे श्रीमत का उल्लंघन करते तो उन्हें देखकर दुखी हो जाना, एक है रहम तरस की भावना, उससे भी नीचे थोड़ा दुखी हो जाना उनके साथ, और श्रीमत उन्हें पता है, अवज्ञा नहीं करते हो, हाँ दूसरे करते हैं श्रीमत की अवज्ञा, हाँ तो वो पहला ही पॉइंट में आ गया उसके, तो दूसरे जब अवज्ञा करते, अवहेलना करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उन्हें देख कर घृणा उत्पन्न होना मन में, आज ही मुरली में कहा था ये नहीं करना और आज ही कर रहे, हमारे ही बाजू में बैठे थे सुनते समय, बाबा ने आज ही कहा था क्रोध नहीं करना है, और दोपहर में वही क्रोध कर रहे और हमारे ही सामने बैठ के। श्रीमत की अवहेलना, श्रीमत का उल्लंघन, और मैं राइट हूं, ये भी सूक्ष्म माया है, मेरे जो विचार है, मेरा जो चिंतन है वो राइट है, मैं जो सोच रहा हूं, बाबा ने ये बात का ये अर्थ बताया है, और किसी का सुनने को तैयार नहीं है, अपना ही अपना बताना, यही अर्थ है। ये भी एक सूक्ष्मतम माया है। और मैं तो मैं पुराना हूँ, अनुभवी हूँ, पुराना हूँ, यहाँ वाला हूँ, मेरी पहचान बहुत है, मेरा सब कुछ एक्यूरेट है। और पूर्णिमाबेन तो क्या फीलिंग, फीलिंग की बीमारी नहीं, फीलिंग को तो पार करके है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, पुरुषार्थी है। फीलिंग तो जो नए नए हैं उनको ज्यादा फीलिंग आती है। और दूसरे वो एक ही है, मर्यादा पर नहीं चलते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। हाँ ये एक है, मुरली में जो पॉइंट आ गई तो दूसरों को कहेंगे ये पॉइंट तुम्हारे लिए आज बाबा ने बोला खास, मुरली पर टॉन्ट्स। कोई कोई योग में बहुत नींद आती है और बाबा ने बोल दिया अगर मुरली में, देखा ये तुम्हारे लिए खास बोला है आज बाबा ने, तुमको नींद ज्यादा आती है ये तुम्हारे लिए, अच्छे से पढ़ो, तुम्हारे लिए ध्यान से पढ़ना इसको। तो ये भी एक सूक्ष्म माया है। और दूसरे में क्यों नहीं है, और एक महान धर्म सम्मेलन कभी हुआ था जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर और धर्म गुरु आए थे, और उन्होंने सबने बड़े बड़े अच्छे अच्छे पावरफुल भाषण किए। किसी ने ब्रह्मचर्य के ऊपर भाषण किया, किसी ने अब परिग्रह के ऊपर भाषण किया, धन कितनी बड़ी माया है इसके ऊपर भाषण किया, किसी ने अहंकार के ऊपर भाषण किया कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार से क्या क्या नुकसान होता है, और मनुष्य की कैसी दुर्गति हो गई है, और मनुष्य समाज आज कैसा तमो प्रधान हो गया है। किसी ने कहा काम महाशत्रु है, इस तरह से बड़े बड़े प्रवचन किए सबने। कई दिनों तक धर्म सम्मेलन चलता है ना, तो उस धर्म सम्मेलन में कई दिनों तक इस तरह से प्रवचन हुए, प्रवचन पूरा हुआ। बड़े बड़े चार पांच धर्मगुरु, एक जो उनका विश्राम स्थान था वहां पर फिर आए, और अभी पूरा ही हुआ था तो उन्होंने कहा कि अभी धर्म सम्मेलन तो पूरा हुआ, अभी चलो अपने अपने मन की बात कहते हैं, बहुत हो गई, दुनिया को जो सुना था सुनाना था वो सुना दिया, पर हमारे भी मन में बहुत सारी दबी हुई बातें हैं, छोड़ो अभी निकालो, क्योंकि हमको भगवान के सामने तो जाना है ना। तो जो सबसे बूढ़ा होता है 75 साल का, वो कहता है अब मैं पहले अपने से ही चालू करता हूँ। सारे सम्मेलन में मेरे 3-4 सत्र थे, सभी में मैंने धर्म के पैसों के विरोध में बहुत जोर शोर से भाषण किए, और यही नहीं हमेशा ही करता रहा हूं, किसके विरोध में, धन के विरोध में। पर एक वास्तव में असली बात आज आप सबको बताता हूं, जितना मुझे धर्म से धन से प्यार है शायद ही कोई होगा दुनिया में जिसे प्यार होगा। जहां पर भी धन की बात आती हो ऐसा मन में उतावलापन जागता है कि बस भागता हूं, पर ये शिष्यों के कारण मुझे अपनी इन इच्छाओं को थोड़ा मैंने दबा के रखा है, पर अब आप सब लोगों के सामने क्या छुपाना, बता ही देता हूं कि जब तक आज तक मैंने जीवन में जो कुछ किया बस धन के ही पीछे भागा रहा हूं। परंतु हाँ, जितने भाषण आज तक किए हैं धन के विरोध में किए, ये गृहस्थी लोग जो हमको सुनने आते हैं उनको मैंने हमेशा बताया है धन के पीछे बिल्कुल मत भागो, भगवान के पीछे भागो। पर मेरे अंदर से जैसे ही धन की बात आती है तो कुछ कुछ हो जाता है, अंदर ही अंदर हलचल उत्पन्न होती है मेरे अंदर। तो ये है मेरी वास्तविकता। दूसरा कहता है ये तो बहुत छोटी बात है, अब मेरी बात सुनो। सारे सम्मेलन में 3-4 ब्रह्मचर्य के सारे व्याख्यान तो मैंने ही दिए, पर एक बात आप सबको आज बता दूं, सारे ही जीवन भर ब्रह्मचर्य काम के विरोध में मैं बोलता रहा, काम महाशत्रु है, काम नरक का द्वार है, परंतु इसी भाव को मैं सारे उम्र भर दबाते रहा हूं, पर आज तक नष्ट नहीं हुआ है। मेरी स्वभाव में जब तक स्त्रियां नहीं आती मुझे मजा नहीं आता है भाषण करने में, और जितनी ज्यादा स्त्रियां होती उतना ही और जोर शोर से ब्रह्मचर्य पर भाषण करता हूं। जब तक वो मेरे पैर नहीं पड़ती है तब तक मेरे हृदय को आहत राहत नहीं मिलती है, पर क्या करूं, यही सच्चाई है। कितना जोर शोर से, जोर जोर से मैं हमेशा कहता हूं कि नारी नर्क का द्वार है, पर वो ही मेरी सभा में हटनी चाहिए तो ही मुझे अच्छा लगता है, यही मेरी सच्चाई है। तीसरा कहता है, मेरी समस्या इससे थोड़ी ऊपर की है, मेरी समस्या अहंकार की है। जब तक सब मेरा नाम ना ले ले और सब मेरी वाह वाह ना करे सभाओं में, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। और जहां पर मुझे थोड़ा नीचे बिठाया जाता है उन सभाओं में तो मैं जाता ही नहीं बिल्कुल। जहां पर मुझे अध्यक्ष इस तरह से बुलाया जाता है उन्हीं सभाओं में मैं जाता हूं। और इस सभा में मैंने हमेशा यही कहा है कि भगवान को वही पसंद है जो संपूर्ण निर्माण चित्त है और निरंकारी है और जिनमें निमित्त भाव है। इसी पर मैं हमेशा, मेरे भाषण इन्हीं पर रहते हैं हमेशा, परंतु मेरा अंदर से हृदय हमेशा अहंकार की पुष्टि और तृप्ति चाहता है। चौथा कहने लगा, तुमने तो ये सारा एक एक है, मुझ में तो पूरा ये सारी अवगुण पूरे के पूरे मुझ में भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये नहीं है और ये नहीं है। आप में से तो जिसमें अहंकार है उसमें क्रोध नहीं, उसमें काम नहीं, मेरे में तो ये चारे ये सभी है। फिर जो कितना हो गया, पांचवा, चार हो गए ना, तो पांचवा जो धर्म गुरु है, अब ये सबसे पावरफुल है। वो वहां से भागने लगता है फिर। अरे वो कहते हैं, अरे ऐसे कैसे आप भाग सकते हो, हम सबने अपनी अपनी दिल की बात कह दी, तुम भी कहो, ये तो हमारी गुप्त सभा है ना, ये कोई बाहर थोड़ी जाने वाली है, ये बातें ये हमारी आपस की बातें हैं। और हम सब तो एक ही बिजनेस है, हमारा बिजनेस भी एक ही है, लोगों को ज्ञान सुनाना, तो तुम कहां भागे जा रहे हो। तो कहता है मेरी कमजोरी ऐसी है कि तुम ना सुनो वही बेहतर है। मेरी कमजोरी बोलते फिर भी बताओ तो कहते हैं मेरी कमजोरी यह है, निंदा। जब तक मैं तुम सबकी बातें सबको नहीं सुना दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जब तक मैं जाऊं नहीं हर एक टीवी चैनल के पास और टीवी चैनल को नहीं सुनाऊंगा कि ये गुरु में ये है, सबकी निंदा में जो सुख मुझे मिलता है वो और किसी में नहीं मिलता है। वो जो सभाओं में वाह वाह कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। यहाँ जब मैं सबकी निंदा करता हूँ तो एक एक बात मेरी दिल थाम कर लोग सुनते हैं कि मैं क्या कहूं। तो मैं तो भागा, उसको पकड़ने की कोशिश करते पर वो कहां रुकेगा, हम भागा वो भी। जो हम जितना जोर से दूसरों को समझाते हैं हो सकता है वो उतना ही तीव्रता से हमारे अंदर धक्के खा रहा है। असको जगत माही, ऐसा जगत में कौन है जो इन विकारों से मुक्त है। विकारों से मुक्ति की प्रथम अवस्था है स्वीकार करना, एक्सेप्टेबिलिटी। पहले ये स्वीकार करना कि ये मुझ में है, चाहे 20 साल हो गए ज्ञान में, चाहे 30 साल हो गए, चाहे 40 या 50, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। पुरुषार्थ का समय कितना है, 20 साल 40 साल से ज्ञान में है परंतु पुरुषार्थ का समय कितना चल रहा है। योग का समय कितना है, ज्ञान हमने कब से है, ये सूक्ष्म प्रश्न है। माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानना, माया को समझना, माया क्या है, केवल रटते रहना कि मैं माया जीत हूं और मैं माया जीत हूं, इससे नहीं होगा। ये धर्म सम्मेलन वाले गुरु फिर भी बैठे और अपनी चर्चा तो की, इतने साल से जो दबा हुआ तो उन्होंने निकाला, तो स्वीकार तो किया कि मुझ में ये है। दुनिया को सिखाते हैं कि ये नहीं करो, परंतु उसे खुद पता है कि मुझ में है। अगर ये भी भान है, पता है, बोध है, तो शायद एक दिन मुक्त भी हो जाए। पर यदि है और ये कहे कि है ही नहीं, अगर कोई मरीज जो बीमार है और कहे कि मुझे बीमारी है ही नहीं, अब उसको बीमारी से कैसे मुक्त करे। कोई सोया है और हम उससे जगा दे तो उठ सकता है, पर जो सोया ही नहीं और कोई ढोंग कर रहा है कि मैं सोया हूं, अब उसको जगाने का उपाय क्या है, उसको कैसे जगाया जाए। जो सोया ही नहीं है परंतु दिखा रहा है मैं सोया हूं, उसको कैसे जगाया जाएगा। इस ज्ञान मार्ग में बाकी सब जानो न जानो, एक ही चीज को जानना है, माया। बाकी सारा ज्ञान न हो चलेगा, एक ही चीज का ज्ञान हो, अज्ञान का, माया का, कमजोरी का, किस रूप में कैसे आती है, हमारे जीवन में कहां आती है। क्योंकि माया वही वही रूप धारण नहीं करती। वो बंदर अभी बहुत बुद्धिमान हो गए, टोपी उतार कर फेंकने वाले नहीं है। इसके लिए माया भी अपना रोज नए नए रूप धारण करती है। उसके लिए हमारी बुद्धि भी रोज रोज उतनी ही सूक्ष्म होती जाए। और एक सूक्ष्म माया है, ये तो हम माया के नंबर गिना रहे थे, और माया श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए। देवेंद्र भाई, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए, साधारण पुरुषार्थियों के लिए नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिनका योग का चार घंटा है, उनके लिए। प्रभाकर भाई, संपर्क, सोशल नेटवर्किंग साइट्स से होना वाला जो संपर्क है, उससे उत्पन्न होने वाली मैत्री, उससे उत्पन्न होने वाली फ्रेंडशिप, ये माया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, मेल, जब वो बाप था तब वो बंदर इतने शक्ति बुद्धिमान नहीं थे, उनको तो जैसा उसने किया, पर अभी बेटे का समय चल रहा है, वो बुद्धिमान हो गए। जब कुछ समय साकार मुरलिया जब चली, वो दूसरा टाइम था, अभी समय दूसरा चल रहा है। अभी माया भी हर एक के जेब में है। संपर्क, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप कहां से चालू होता है और कहां अंत होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। चालू कहां से हुआ था? फैमिलियरिटी, हेलो से चालू हुआ था, ओम शांति से चालू हुआ, कहां से कहां पहुंच गए। चालू ज्ञान से ही होता है माया। ज्ञानियों में डायरेक्ट माया नहीं आती है, अपने अपने रूप बदल बदल कर आती है। जैसे हमेशा कहा है ना, विश्वामित्र के सामने उसकी तपस्या भंग करने पहले कौन आई थी? मेनका तो बाद में आई, पहले तो सीधा इंद्र ने रंभा को भेजा था, उसने सीधा अटैक करने की कोशिश की, उसको सीधा शाप ही दे दिया उसने, और वो पत्थर बन गई रंभा। बाद में मेनका ने स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की, उसने उसे डायरेक्ट नहीं, उसकी पहले सेवा की कितने माह तक, उसको जल दिया, उसके लिए फल लाए, सारी सेवा करती रही उसकी, तो उस रीति से। तो यहां पर संपर्क जो चालू होता है, ओम शांति से चालू होता है, एक छोटा सा दो शब्दों का मैसेज, ओम शांति, और वो बनता है घंटों भर की बातें, धीरे धीरे बढ़ते 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 एक दो सेंटेंस का मैसेज, दो वर्ड्स का मैसेज अभी बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर समय भी बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर टाइम भी बड़ा बड़ा होते जाता है, और वो कहां से कहां ले जाता है आत्मा को। ज्ञानी तो आत्माओं के लिए यह भी माया है। जितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स है सभी
अभी रंबा और मेन का कोई बगड़ा होता।